الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. امید ہے آپ لوگوں جو سیرہ صحابہ ہے اس کے میری سپیڈ سے شکایت تو نہیں اب ہے، کیونکہ میں یہ شکایت مجھے آئی تھی کہ آپ بہت تیز تیز کرا رہی ہیں، تو اس لیے میں نے بہت سلو شروع کر دی پچھلی دو کلاس سے. امید ہے کہ آپ لوگ تھوڑا بہت لکھ سکتے ہوں گے. ٹھیک ہے، الحمدللہ. جی، اب آداب زندگی میں ہم لباس کے آداب پڑھ رہے تھے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پاجامہ اور لنگی وغیرہ تخنوں سے اونچا رکھیے، یہ آپ کے لیے نہیں مردوں کے لیے. یہ نہ ہو کہ آج آپ جا کے کہیں کہ آج تو ہم نے یہ سن لیا. جن کو کرنا چاہیے ان کے نیچے اور جن کو نہیں کرنا چاہیے ان کے اوپر. جو لوگ غرور اور تکبر سے اپنا پاجامہ اور لنگی وغیرہ لٹکا لیتے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں وہ ناکام اور نامراد لوگ ہیں اور سخت عذاب کے مستحق ہیں. آپ کو پتہ ہے ہم نے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعے میں پڑھا تھا کہ ان کا جو نیچے کا آزار تھا وہ تھوڑا نیچے چلا جاتا تھا کیونکہ وہ دبلے بہت تھے، لیکن ان کو یہ فکر ہوئی کہ کہیں میں ان میں شامل نہ ہو جاؤں جن کے بارے میں یہ وعید ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، تین قسم کے لوگ ایسے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن نہ تو ان سے بات کرے گا، نہ ان کی طرف نظر رحمت فرمائے گا، نہ ان کو پاک صاف کر کے جنت میں داخل کرے گا. اب یہ انتہائی اہم بات ہے، کیونکہ جس سے اللہ تعالیٰ کلام نہ کرے، جس کے اوپر نظر رحمت نہ کرے، جس کو معاف ہی نہ کرے. پاک صاف کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کو معاف کر دینا. جس کو اللہ تعالیٰ معاف نہ کرے تو اس کا کیا حال ہوگا؟ اور وہ تین قسم کے لوگ کون ہیں؟ بلکہ ان کو انتہائی دردناک عذاب دے گا. حضرت ابو ذر غفاری نے پوچھا، یا رسول اللہ، یہ ناکام اور نامراد لوگ کون ہیں؟ ارشاد فرمایا، ایک وہ جو غرور اور تکبر میں اپنا تہبند تخنوں سے نیچے لٹکاتا ہے، جو مرد ایسے کرتے ہیں. دوسرا وہ شخص جو احسان جتاتا ہے. اب ہم چلو پہلی کیٹیگری میں تو نہیں آتے، لیکن احسان جتانا کتنا زیادہ ہے ہمارے اندر کہ ہم ذرا سی بھی کسی کے ساتھ بھلائی کر دیتے ہیں نا، فوراً اس کو تانا مار دیتے ہیں. یاد رہی ہے میں نے تمہارے ساتھ اس وقت کیا کیا تھا، بھول گئی ہو اس وقت یہ وہ دن تمہارے اوپر تھے. تو یہ احسان جتانا ہے، میں نے اس وقت آپ کی ہیلپ کی تھی. تو وہ جو نیکی ہے وہ تو گئی گئی، الٹا اس میں شامل ہو گئے جن کی طرف اللہ تعالیٰ نظر رحمت بھی نہیں کرے گا. کبھی زبان پر لے کر ہی نہ آئیں کبھی کسی کے ساتھ بھلائی کر دی ہو کہ آپ نے احسان جتانا. اگر کبھی زندگی میں یہ ہو چکا ہے تو ہم آج اللہ تعالیٰ سے اس پہ معافی مانگتے ہیں، کیونکہ شیطان ہمارے ساتھ ہے نا. کہیں نیکی اگر کر ہی لیں تو اس کو ایسے ضائع کرا دیتا ہے کہ انسان کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ یہ میری نیکی ضائع ہو گئی. اور تیسرا وہ شخص ہے جو جھوٹی قسموں کے سہارے اپنی تجارت کو چمکاتا ہے. یہ مسلم کی حدیث ہے، یعنی جھوٹی قسم کھا کے اپنا سودا بیچتا ہے. نہیں نہیں، یہ تو قسم سے اتنی تو ہماری خرید بھی نہیں ہے. کتنی دفعہ ہم یہ سنتے ہیں، اس کے بعد اتنے ہی پیسوں پہ آپ کو دے بھی رہے. قسم سے یہ ایسے ہی ہے، یہ اتنے کا ہے، یہ تو ایسے ہی ہے، ہمیں تو یہ اتنے کا پڑا ہے. تو سودا تو بک جاتا ہے لیکن برکت اٹھ جاتی. اور اس حدیث کے اس میں آ گئے اگر تو اللہ نہ کرے ایسے پیسے کو کیا کرنا ہے. نظر رحمت بھی نہیں کرے گا، اس کو معاف کر کے جنت میں بھی داخل نہیں کرے گا، اس سے کلام بھی نہیں کرے گا. تو ایک سزا نہیں ہے، کتنی ساری ہیں. عبید بن خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا ایک واقعہ بیان فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ مدینہ میں جا رہا تھا کہ میں نے اپنے پیچھے سے یہ کہتے سنا، اپنا تہبند اوپر اٹھا لو کہ اس سے آدمی ظاہری نجاست سے بھی محفوظ رہتا ہے اور باطنی نجاست سے بھی. میں نے گردن پھیر کر جو دیکھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے. میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، یہ تو ایک معمولی سی چادر ہے، یعنی اس میں کیا غرور اور تکبر ہے؟ بھلا اس میں کیا تکبر ہو سکتا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا تمہارے لیے میری اتباع ضروری نہیں ہے؟ جب میں یعنی ایسے کرتا ہوں تو کیا مجھے فالو کرنا تمہارے لیے ضروری نہیں ہے؟ اس بات کو چھوڑو غرور اور تکبر ہے یا نہیں. تو میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ سنے تو فوراً میری نگاہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تہبند پر پڑی. میں نے دیکھا کہ آپ کا تہبند نصف پنڈلی تک اونچا ہے. اتنا اونچا کرتے تھے اس زمانے میں بھی. آج یہ صرف آج نہیں، اس زمانے میں بھی جو بڑے عمرا بادشاہ ہوتے تھے ان کے پیچھے کپڑے ڈریگ کرتے ہوئے آتے تھے. عورتوں کے لیے ہاں یہ ضرور ہے کہ ان کا عبایا جو ان کی چادر ہے وہ اتنی ہو کہ नीचे यानी ड्रैग हो, घिसटती आए। एक औरत ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा था कि मेरा चादर इतनी लंबी हो कि वो मट्टी में आती है, गंदी होती है, तो क्या मैं ऊंची कर लूं? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर एक जगह पे कुछ गंदगी लगती तो आगे जाती है तो साफ भी हो जाती, क्योंकि चलते जाएंगे तो कहीं कुछ लगेगा भी तो आगे साफ भी हो जाएगा। लेकिन ये नहीं फरमाया कि नहीं तुम ऊंचा कर लो। वो सोचेंगे, और हमारे कपड़े कैसे हैं जिनसे टखने नंगे होते हैं। इवन नमाज में टखने आपके नंगे नहीं हो सकते, मर्दों के तो नंगे होने ही हैं, औरतों के नहीं हो सकते, फिर भी टखने नंगे होते हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये इरशाद है कि टखनों से ऊंचा पाजामा और लुंगी वगैरह रखने से आदमी हर तरह की जाहरी और बातनी निजासतों से महफूज हो जाता है, बड़ा ही मानी खेज है। इसका मतलब यह है कि जब कपड़ा नीचे लटकेगा तो रास्ते की गंदगी से मैला और खराब होगा, पाक साफ नहीं रह सकेगा, और ये बात जौके तहारत और नजाफत पर नहायत गराएं। फिर ऐसा करना किब्र और गुरूर की वजह से होता है, और किब्र और गुरूर बातनी गंदगी है। और अगर ये मसलहतें ना भी हों तो मोमिन के लिए तो ये फरमान ही काफी है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में तुम्हारे लिए बेहतरीन नमूना, फिर हमने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फॉलो करना तो हर चीज में ही करना है ना। फिर अबू दाऊद की हदीस में तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी बड़ी ही लर्जा खेज सजा बयान फरमाई। आपने फरमाया, मोमिन का तहबंद आधी पिंडली तक होना चाहिए और उसके नीचे टखनों तक होने में भी कोई मजायका नहीं। यानी अगर सिर्फ टखने नंगे हो रहे हैं तो भी ठीक है, लेकिन टखनों से नीचे तहबंद का जितना हिस्सा लटकेगा वो आग में जलेगा। और जो शख्स गुरूर और घुमंड में अपने कपड़े को टखने से नीचे लटकाएगा, कयामत के दिन खुदा की तरफ नजर उठाकर भी ना देखेगा, खुदा इसकी तरफ नजर उठाकर भी ना देखेगा। इससे पता चलता है कि अल्लाह ताला की नजर रहमत से ऐसा इंसान महरूम हो जाएगा। रेशमी कपड़ा ना पहनिए, ये औरतों का लिबास है, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मर्दों को औरतों का सा लिबास पहनने और उनकी सी शक्लो सूरत बनाने से सख्ती के साथ मना फरमाया। उमर रजी अल्लाह ताला फरमाते, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, रेशमी लिबास ना पहनो कि जो इसको दुनिया में पहनेगा वो आखरत में इसको ना पहन सकेगा। बुखारी और मुस्लिम की ये रिवायत है, क्योंकि जन्नत का रेशम उस बंदे के ऊपर हराम है जो दुनिया में जो आदमी रेशम पहनता है। रेशम सिर्फ औरतों के लिए, मर्दों के लिए प्योर सिल्क जो होती है, एक तो सिंथेटिक है वो तो अलग बात है, लेकिन प्योर सिल्क नहीं आदमी उनको पहननी, हराम है उनके ऊपर। एक बार नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अली रजी अल्लाह तआला अन्हु से फरमाया, इस रेशमी कपड़े को फाड़ कर और इसके दुपट्टे बनाकर इन फातिमाओं को तकसीम कर दो। वो कौन थी फातिमाएं? एक तो फातिमा बिनते असद हजरत अली की अपनी वालदा, एक फातिमा तो जोहरा, एक फातिमा बिनते हमजा जो हजरत हमजा की बेटी थी। इससे भी मालूम हुआ कि खवातीन के लिए रेशमी कपड़ा पहनना पसंदीदा है, इसीलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया कि खवातीन के दुपट्टे बना दो, वरना कपड़ा तो दूसरे कामों में भी यूज हो सकता है। औरतें ऐसे बारीक कपड़े ना पहने जिसमें बदन झलके, और ना ऐसा चुस्त लिबास पहने जिसमें बदन की साख और ज्यादा पुरकशिश होकर नुमाया हो और वो कपड़े पहनकर भी नंगी नजर आए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसी औरतों को इबरतनाक अंजाम की खबर दी है, फरमाया, वो औरतें जहन्नमी हैं जो कपड़े पहनकर भी नंगी रहती हैं, दूसरों को रिझाती हैं और खुद उन पर रीझती हैं। इनके सर नाज से मुख्ती ऊंटों के कोहानों की तरह टेढ़े हैं। ये औरतें ना जन्नत में जाएंगी और ना जन्नत की खुशबू पाएंगी, हालांकि जन्नत की खुशबू बहुत दूर से आती है। ये रियाजु सालेहीन की हदीस है। आप ये देखें कि बाज दफा हम इन अहादीस को इग्नोर करके और ये कहते हैं कि कहाँ पे इस्लाम में पर्दे का, बल्कि यहाँ तक कि एक खातून को कहते हुए सुना, बड़ी मुझे हैरत हुई। उन्होंने कहा, जी पर्दा तो बिल्कुल जरूरी नहीं है, इसलिए कि अगर पर्दा जरूरी होता तो देखे 5 पिलर्स ऑफ इस्लाम है, इसमें कोई पर्दा है? अब बंदा ऐसी अकल को क्या कहे, क्योंकि हमारे पास दीन का नॉलेज नहीं है। जब दीन का नॉलेज ना हो ना तो फिर बंदा ऐसी ही बातें करता है। इससे ज्यादा वाजे क्या हदीस हो सकती है कि फरमाया कि वो जन्नत में ही नहीं एंटर हो सकती? क्या ये 5 पिलर्स ऑफ इस्लाम ही इस्लाम है? ये तो सिर्फ पिलर्स हैं, इनके ऊपर तो इमारत ने खड़े होना है। अभी इस्लाम की इमारत की कोई ऐसी इमारत आपने कभी देखी है जो सिर्फ पिलर्स खड़े और आपका ये इमारत है? ये तो बिल्डिंग है ही नहीं, वो तो सिर्फ पिलर्स है, बिल्डिंग तो इसके ऊपर कंस्ट्रक्ट होनी है, दीन इस्लाम इसके ऊपर बेस करेगा, ये तो सिर्फ बेसिस है। اور ہم نے اس کو ہی سمجھ لیا کہ سارا کا سارا دین. آپ دیکھیں اس حدیث میں فرمایا جو کپڑے پہن کے ننگی ہوتی, کپڑے پہن کے ننگے ہونے کا مطلب یہ ہے کہ یا تو کپڑے اتنے سی تھرو ہیں کہ سارا جسم اس میں سے جھلک رہا ہے, اور آپ دیکھیں انڈر گارمنٹس تک بھی بعض دفعہ عورتوں کے نظر آتے ہیں جب گرمیاں ہوتی ہیں, ایون مسجدوں میں اس طرح سی حالت میں آ رہے ہوتے ہیں. اس سے تو بہتر ہے کہ گھر میں ہی نماز پڑھ لیتے. اسی طرح بعض دفعہ اتنے ٹائٹ ہوتے ہیں کہ ایسے لگتا ہے کہ مطلب ہر ایک جسم کی ساخت نظر آ رہی ہوتی. ایون آپ ابایا بھی ایسا نہیں پہن سکتے جو اتنا ٹائٹ ہو کہ آپ کی چیسٹ نمایاں ہو رہی ہے, اور کپڑوں کا تو کیا کہنا. تو ہم یہ ساری چیزیں بھول کے اور ہم سوچتے ہیں کہ جنت تو ہمارے لیے, میں تو نمازی ہوں اور میں قرآن کی کلاسیں لے لیتی ہوں تو لہٰذا میرے لیے سب ٹھیک ہے, اور اس چیز کو آج اگنور کر دیں. اس کو اب بیکورڈ سمجھا جاتا ہے, یعنی ہمیں کوئی بیکورڈ نہ کہے جنت بے شک چلی جائے, جہنم ہمیں گوارا ہے. تو یہ کوئی مولویوں کی بات نہیں ہے, یہ کسی نے بنایا ہوا نہیں ہے. یہ جو ہم سوچتے ہیں نا, پتہ نہیں کسی نے خود ہی گھڑ کے پتہ نہیں ہمارے پر کوئی ظلم ہو رہا ہے, ایسا نہیں ہے. اس چیز کو سمجھیں کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بات فرمائی, اور قرآن میں اس کا حکم ہے. نہ قرآن کو دیکھنا نہ حدیث کو دیکھنا, اور لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم سب سے زیادہ دیندار. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو دوسروں کو رجھاتی ہیں, اور آج تو یہ کھلم کھلا یہ چیز ہے کہ میں مجھے اٹریکٹیو لگنا ہے اور ایسے کپڑے پہنو کہ ہم اٹریکٹیو لگیں, ہم حسین لگیں کہ لوگوں کے سر گھوم گھوم کے اور ہمیں دیکھیں. تو اب آپ خود سوچیں کہ جب ہم ایسے زیب و زینت کر کے جائیں گے اور پردے کو بالکل سمجھیں گے ہی نہیں کچھ, تو پھر یہی ہوگا کہ سر بھی گھومیں گے اور دوسروں کو رجھاتی ہیں اور خود بھی ان پہ رجھتی ہیں. اور فرمایا ان کے سر بہت ہی اونٹوں کے کوہانوں کی طرح ٹیڑھے ہیں. یعنی ایک تو یہ کہ دیکھیں جیسے ہم کوئی سٹائل بنا لیتے ہیں تو ایسے ہو جاتا ہے نا ہمارا سر, یا پھر پیچھے اتنے بڑے جوڑے بنا لیتے ہیں کہ جیسے کوہان ہے اونٹ کے. یہ ساری چیزیں ناجائز ہیں. جنت میں جانا تو دور کی بات ہے, فرمایا جنت کی خوشبو بھی نہیں پائیں گی. خوشبو تو بہت دور سے آئے گی جنت کی, خوشبو بھی نہیں پائیں گی, جانا تو دور کی بات ہے. تو فورگیٹ اٹ دین. اب اس کے بعد کیا رہ جاتا ہے, اس کے بعد کوئی بات رہ جاتی کہ ہم کہیں کہ وہ یہ کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے, یہ فرض ہے کہ یہ سنت ہے کہ یہ نفل ہے کہ یہ کیا ہے, یہ پوچھنے کی کوئی بات رہ جاتی ہے؟ ہاں, جنت کس نے گیو اپ کرنی ہے؟ اور فرمایا وہ عورتیں جہنمی ہیں, جہنمی ڈکلیئرڈ. اور مشکل یہ ہے کہ ہم عورتوں کے لیے نا سب سے زیادہ یہی کام مشکل ہے, یہ ہماری کمزوری ہے سمجھ لیں, کہ ہم نماز بھی پڑھ لیں گے, قرآن بھی پڑھ لیتے ہیں, روزے بھی رکھ لیں گے, اور بھی خدمت خلق کے کام کریں, کہتے ہیں یہ کام نہ ہمیں کہا جائے. آج وہ عورت جو صحیح پردہ کرتی ہے وہ لوگوں میں عجیب لگتی ہے, اور باقی سارے لگتے ہیں کہ یہ نارمل ہے, یہ بیچاری ایک نارمل کھڑی ہوئی. حالانکہ واقعی وہ جو حدیث ہے نا وہ پوری ہو گئی ہے کہ اسلام اجنبی ہو جائے گا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَتُوبَى لِلْغُرَبَا, تو مبارک ہو اجنبیوں کو, توبہ ہے ان کے لیے, خوشخبری ہے جو اجنبی ہیں. اگر آج آپ کو کوئی عجیب نظروں سے دیکھ رہا ہے نا کہ یہ کیا ماسی بن کے آ گئی ہے یا کیا بن کے آ گئے, تو کوئی بات نہیں, اللہ کی نظر میں اگر میں اچھی ہوں نا تو میرے لیے یہ کافی ہے, چاہے پوری دنیا کی نظر میں میں کچھ ہوں. اور اگر اللہ کی نظر میں میں گر گئی, ساری دنیا کی نظر میں بھی اچھی بن جاؤں تو کیا فائدہ. ایک بار حضرت اسماء باریک کپڑے پہنے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں, وہ سامنے آئیں تو آپ نے فوراً منہ پھیر لیا اور فرمایا اسماء, جب عورت جوان ہو جائے تو اس کے لیے جائز نہیں کہ منہ اور ہاتھ کے علاوہ اس کے جسم کا کوئی حصہ نظر آئے, منہ اور ہاتھ کے علاوہ کہ اس کے جسم کا کوئی حصہ نظر آئے. تہبند اور پاجامہ وغیرہ پہننے کے بعد بھی ایسے انداز سے لیٹنے اور بیٹھنے سے بچیے جس میں بدن کھل جانے یا نمایاں ہو جانے کا اندیشہ ہو. بعض دفعہ عورتیں سوچتی ہیں کہ کوئی بات نہیں, میں گھر پہ ہی ہوں نا, اتنے ٹائٹ کپڑے پہن لیں گے کہ اگر باپ ہے یا بیٹے ہیں آپ کے, یہ مطلب نہیں ہے کہ ان کے سامنے ہماری کوئی شرم اور حیا ہی نہیں, یا ہم ایسے کھلے گلے ان کے سامنے پہن لیں کہ اگر بیٹے جوان ہیں یا بھائی ہیں گھر میں یا باپ ہے تو ان کے سامنے بھی ایک شرم ہونی چاہیے. حیا جو ہوتی ہے نا وہ بہت ضروری ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس میں حیا نہیں تو وہ پھر جو مرضی کرے, حیا نہیں تو ایمان ہی نہیں ہے. हाँ यार, तो फितरी चीज है कि इंसान को ये शर्म होनी चाहिए। ये नहीं कि उस वक्त हम दुपट्टे उतार के फेंके में और गले डीप पहने में और जैसे मर्जी उल्टे पुल्टे लेटे में कि अब कोई बात नहीं, ये तो मेरे बाप ही है या तो मेरा भाई है। और आज का दौर जितना फितने का दौर है, मैं आपको बता रही हूँ, शायद ही कभी कोई जमाना इतने फितने का हो जितना आज का दौर है। हम ये समझते हैं ना कि आज सारों की निगाहें पाक हैं और क्या है। और किसी खातून ने इस बात पे सिर्फ बहस शुरू कर दी कि देखें जी, वो मुझे, मेरी तो अपनी सिर्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी, मैं तो अपने आप को संवार के निकलूंगी, ये दूसरों की जिम्मेदारी कि वो अपनी नजरों की हिफाजत करें, मेरी तो जिम्मेदारी नहीं है। ये सारी हदीसें और आयतें फिर क्यों है? तो इस चीज में कोई बहस की गुंजाइश ही नहीं। तो हमने इतने इतने जस्टिफिकेशन दे दी, में एटलीस्ट इतना कम अज कम करें जस्टिफिकेशन ना दिया करें। एटलीस्ट ये कह दें कि हाँ मेरी कमी है, मेरे अंदर कोताही है और मैं समझती हूँ, हाँ ये अल्लाह का हुक्म है, मुझसे बस दुआ ये है अल्लाह से कि अल्लाह मुझसे पूरा करा दे, अल्लाह मेरी मदद कर इसमें, ना कि हम इसके ऊपर इतने ढीठ हो जाएं कि अब हम अपने गुनाह को भी जस्टिफाई करने लगे। जब गुनाहों की जस्टिफिकेशन इंसान देने लगता है ना, फिर इसलाह का दरवाजा बंद हो जाता है, फिर इंसान ढीठ हो जाता है, फिर कभी तौबा कर ही नहीं सकता। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, एक जूता पहनकर ना चला करो और तहबंद में एक जानू उठाकर उकड़ू ना बैठो और बाएं हाथ से ना खाओ और चादर पूरे बदन पर इस अंदाज से ना लपेटो कि फिर काम काज करने या नमाज वगैरह पढ़ने में हाथ ना निकल सके। तो मतलब ये भी मना है कि एक जूता पहन के और दूसरा ना पहना जाए, और ऐसे जैसे कभी बच्चे भी करते हैं ना इस तरह से, तो ऐसे ना किया जाए। अच्छा ये देखें, सुभान अल्लाह, कई लोग कितने वो इस चीज के वो होते हैं केयरफुल, के एक आदमी था, एक किसी के शागिर्द थे वो, ऐसे अल्लाह ताला के नबी की सुन्नतों को पूरा करने वाले थे कि वो किसी जगह पे मस्जिद में गए और जब जूते पहनने की बारी आई तो उन्होंने पहले एक जूता लिया, फिर दूसरा जूता ढूंढा और फिर दोनों को लेकर बैठे और फिर पहना। तो किसी ने कहा आप एक पहन ले, जैसे हम करते हैं ना, एक पहन के फिर दूसरा ढूंढने लगते हैं, फिर दूसरा मिलता है फिर दूसरा पहन लेते हैं। हमने कहा मैंने नहीं चाहा कि मैं एक लम्हे भर के लिए भी अपने नबी के फरमान की खिलाफ वर्जी करूँ, एक कि जितनी देर के लिए मैं चलूंगा और मैं देखूंगा कि मेरा दूसरा जूता कहाँ है, तो एक पैर में जूता पहना मैं, इतनी देर के लिए भी नहीं मैंने चाहा कि अपने नबी के हुक्म का तोड़ू। सुभान अल्लाह। तो और ना चित लेट कर एक पाँव को दूसरे पाँव पर रखो, क्योंकि इन सारी चीजों से क्या होता है, सतर खुल सकता है ना इंसान का। लिबास में औरतें और मर्द एक दूसरे का सा रंग ढंग ना इख्तियार करें। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि खुदा ने उन मर्दों पर लानत फरमाई है जो औरतों का सा रंग ढंग इख्तियार करें, और उन औरतों पर भी लानत फरमाई है जो मर्दों का सा रंग ढंग इख्तियार करें। और अब बताएं कि इस हदीस को इस जमाने से ज्यादा आप कब समझ सकेंगे, जिसमें ट्रांसजेंडर का और इसका फितना खड़ा हुआ है, जिसमें तो बिल्कुल ही उलट के रखती थी कि आज तक इनको यही कंफ्यूजन हो रही है कि मैं मर्द हूँ कि औरत है, मुझे तो समझ ही नहीं आ रही, लिहाजा मैं खुद चूज करूंगी कि मैं क्या हूँ, ये खुद चूज करेंगे। इनको अल्लाह ताला ने जो तखलीक किया है उससे इत्मीनान नहीं है। मर्द औरतें बने हुए और औरतें मर्द बनी हुई है, उन्हीं के जैसे लिबास और उन्हीं के जैसे रंग, इतनी सी भी मुशाबहत को पसंद नहीं किया गया बल्कि लानत भेजी गई। लानत मतलब अल्लाह की रहमत से ही दूर है। लिहाजा औरतें भी ना ऐसे रंग ढंग इख्तियार करें कि बाज दफा लोग तीन चार बच्चियां पैदा हो जाती हैं तो फिर उसके बाद एक बच्ची को लड़का बना देते हैं, उसको लड़कों वाले ही लिबास पहनाने लगते हैं और उसको टॉम बॉय, बस ये लड़का है हमारा, ये बेटा है हमारा। इसी तरह बाज लड़के लड़कियों वाले तरीके और उसी तरह बोलना और उसी तरह के रंग ढंग इख्तियार करने लगते हैं, ये भी सब लानत की चीज। ऐसे बाल रख रहे हैं कि जो बिल्कुल औरतों के मुशाबे हैं। अबू हुरैरा रजी अल्लाह तआला फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस मर्द पर लानत फरमाई जो औरतों का सा लिबास पहने और उस औरत पर लानत फरमाई जो मर्द का सा लिबास पहने। एक बार आयशा रजी अल्लाह तआला से किसी ने जिक्र किया कि एक औरत है जो मर्दों के से जूते पहनती है, तो आपने फरमाया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसी औरतों पर लानत। इसी तरह बाज औरतें बिल्कुल ऐसे बाल बनवा लेती हैं, ऐसे बॉयकट करवा लेती हैं कि जो बिल्कुल लड़कों वाली चीज है। बाज लड़के पोनी टेल्स बना लेते हैं, चुटियां बना लेते हैं, ऐसे कर लेते हैं। ऐसी किसी भी चीज से बचना चाहिए जो कि दूसरे जेंडर की से आपको सिमिलर करें। खवातीन दुपट्टा ओढ़े रहने का एहतमाम करें और इससे अपने सर और सीने को छुपाए रखें। अब दुपट्टा लेंगे तो फिर बात है ना, अब तो दुपट्टे भी गायब हो गए। दुपट्टा ऐसा बारीक ना ओढ़ें जिससे सर के बाल नजर आएं। दुपट्टे का मकसद ही है कि इससे जीनत को छुपाया जाए। तो अगर ऐसा दुपट्टा है जो इतना बारीक है तो उससे नमाज भी नहीं होती जिससे सर के बाल नजर आए। कुरान पाक में अल्लाह ताला का इरशाद है, वल यदरिबना बिखुमुरिहिन्ना आला जुयूबिहिन्ना। खिमार जो होता है वो दुपट्टे को कहते हैं, अपने सीनों पर अपने दुपट्टों के आंचल डाल लें। और ये घर के अंदर की लिबास की बात हो रही है कि घर के अंदर ऐसे करना, बाहर जाएंगे तो जिलबाब है फिर, जिसको आप अबाया कह लें या चादर बड़ी कह लें। एक बार नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास मिस्र की बनी हुई बारीक मलमल आई, आपने इससे कुछ हिस्सा फाड़ कर दहिया कलबी को दिया। दहिया कलबी एक सहाबी हैं जो बहुत ही खूबसूरत सहाबी थे, और फरमाया इसमें से एक हिस्सा फाड़ कर तुम अपना कुर्ता बना लो और एक हिस्सा अपनी बीवी को दुपट्टा बनाने के लिए दे दो, मगर इनसे कह देना कि इसके नीचे एक और कपड़ा लगा लें ताकि जिस्म की साख्त अंदर से ना झलके। इतना एहतमाम करने का, हम कहते हैं गर्मी लगती है, लेकिन आप देखिए ना कि गर्मी लगती है तो जहन्नुम की गर्मी तो इससे बहुत ज्यादा है। किताबो सुन्नत की सरी हिदायत को पेशे नजर रखकर एहकाम इलाही के मकसद को पूरा कीजिए और चारागरी की पट्टी को गले का हार बनाकर खुदा और उसके रसूल के एहकाम का मजाक ना उड़ाइए कि दुपट्टा इतना बारीक है और उसको ऐसे डाल लेना ऐसे बिल्कुल गले में, और ये हमने दुपट्टा ले लिया, ये तो मजाक है, मजाक। आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं कि जब ये हुक्म नाजिल हुआ तो औरतों ने बारीक कपड़े छोड़कर मोटे कपड़े छांटे और इनके दुपट्टे बनाए। आप देखें जिस वक्त पर्दे के अहकाम आते थे ना, तो अगले दिन जब औरतों ने फजर की नमाज के लिए जाना था, एक सहाबी रसूल फरमाते हैं कि मैं अपने घर की छत पे खड़ा हुआ था तो मैंने देखा कि मदीना में कितने घरों में लाइट ऑन, लाइट से मतलब है चिराग जल रहा है। तो पता करने पे मालूम हुआ कि औरतें रातों को चादरें सी रही हैं क्योंकि सुबह फजर पे जाना है। तो वो कह देती हैं कि छोड़ो हमें क्या जरूरत है, अभी तो हुक्म आया ही है। फौरन इस तरह समीना वाताना करने वाली थी, फौरन मान जाने वाली। हम कितने दफा हुक्म सुन सुन के भी उसके बाद नहीं मानते, परवाही नहीं करते, हमें फिक्र ही नहीं है। लिबास हमेशा अपनी वुसअत और हैसियत के मुताबिक पहनिए, ना ऐसा लिबास जिससे फखर और नुमाइश का इजहार हो और आप दूसरों को हकीर समझ के इतराएं और अपनी दौलतमंदी की बेजा नुमाइश करें, और ना ऐसा लिबास पहनिए जो आपकी वुसअत से ज्यादा कीमती हो और आप फजूल खर्ची के गुनाह में मुबतला हो, और ना ऐसे शिकस्ता हाल बने रहें कि हर वक्त आपकी सूरत सवाल बनी रहे और सब कुछ होने के बावजूद आप महरूम नजर आए, बल्कि हमेशा अपनी वुसत और हैसियत के लिहाज से मौजूं बासलीका और साफ सुथरे कपड़े पहने। यानी बिल्कुल दोनों एक्सट्रीम से ही मना किया गया ना, एतदाल का रास्ता ही सही है। देखिए अब हम डिफाइन नहीं कर सकते कि इतने का कपड़े आप पहन सकते हैं, इतने के कपड़े इसराफ हैं, इतने के कपड़े कम हैं, इसलिए कि आप महंगाई के लिहाज से वही चीज जो कल 5,000 में आती थी आज 20,000 में आने लगी। ठीक है, तो हम डिफाइन कोई अमाउंट नहीं कर सकते, मगर आपको खुद देखना है कि मेरी हैसियत कितने की है। ये नहीं कि मैं सारी अपनी जो पॉकेट मनी वो सारे कपड़ों के ऊपर ही खर्च कर दूं, वो भी गलत है। ठीक है, ये भी नहीं कि मैं इतनी खस्ता हाल रहूं कि बिल्कुल ही कुछ बनाऊ ही नहीं और इस चीज के ऊपर फखर करूं कि देखो मैं कितनी नेक हूं क्योंकि मैंने बस ये चार कपड़े रखे, वो चार ही पहनती हूं और एक को धोती हूं और एक, हालांकि मेरे पास वसत है। देखिए अपने शोहर के लिए बनना संवरना में भी आपको अजर है, मगर फिर वो शोहर के लिए ही हो, ये नहीं हो कि सारी दुनिया के लिए बनना संवरना और शोहर के लिए गंदे मंदे बन के प्याज और वो वाली लहसुन अदरक वाली बदबुओं के साथ उनसे मिले, वो नहीं करना। ठीक है कि आपके शोहर घर आए तो आपके कपड़ों से कभी खाने की स्मेल नहीं आनी चाहिए, आपका जो नाइट सूट है वो हमेशा खुशबूदार होना चाहिए, वो अच्छा वाला रखे। अगर आपके पास वसत है आप खरीद सकते। ये क्या बात हुई है कि हस्बैंड के लिए जिसकी कमाई से हम कपड़े खरीदते हैं सबसे बोसीदा कपड़े उसको दिखाते हैं और बाकी सारी दुनिया को सबसे अच्छे कपड़े दिखाते हैं। कभी कभी वो कपड़े जो आपने बाहर पहनने के लिए रखे होते हैं ना, वो कभी हस्बैंड की खुशी के लिए भी पहने, उसमें सवाब मिलेगा, उसमें अजर है, चाहे आप किसी भी एज पे बिलोंग करते हैं। क्यों नहीं आप उनकी निगाहों की हिफाजत करने का एहतमाम करते हैं कि वो आपको देखें तो खुश हो, बजाय उनको बाहर कहीं देखना पड़े। क्योंकि जब वो आपको देखेंगे तो वो फिर वैसी हालत में देखेंगे, लेकिन जो ही हमने कहीं बाहर जाना होता है हम इतने सच समझ जाते हैं, बस गाड़ी में ही उनको नजर आएंगे, उसके बाद बस वापस आके थे उस वक्त नहीं तैयार होना जब आप गाड़ी में उनके साथ जा रहे हैं, घर में उनके लिए तैयार हो। हाँ बेचारे वो यही कहेंगे ना, उनको तो तभी आप ऐसे नजर आते हैं जिस वक्त के आप कहीं जा रहे होते हैं, है ना। तो सही कह रही है, बच्चे भी पूछ रहे थे कि आप कहीं जा रहे हैं, तो आप अबाया पहने तो तब उनको पता होना चाहिए कि आप कहीं जा रहे हैं, ना कि आप बने संवरे तो उनको पता हो कि आप कहीं जा रहे हैं। इससे पता चलता है ना कि हम क्या करते हैं, है ना। तो इसलिए उनके लिए भी कभी तैयार हो और कभी अच्छे कपड़े उनको भी दिखाया करें, इसमें कोई हर्ज नहीं। फिर अगर आप वो कपड़े खरीदेंगी भी ना तो कोई गुनाह नहीं है, अगर आप अफोर्ड कर सकते। ये ना हो कि आज जाके हस्बैंड कहें पता नहीं इनको क्या हो गया, सारे पैसे कपड़ों के ऊपर लगा दिए क्योंकि जी वो आज हमने ये दर्स सुन लिया। देखिए अपनी जो आपकी चादर है उसके मुताबिक पैर फैलाने, लेकिन वो कपड़े जो बहुत अरसे से पड़े ही में ना, या आप शादियों पे पहनते हैं, वो कभी कभी हस्बैंड बेचारे गरीब को भी कभी दिखा दें कि वो भी देख ले और वो भी खुश हो जाए, ठीक है। तो कभी उनके लिए पहने और कभी उनके लिए भी बने समरे, ठीक है। और यूजुअली होता ही है कि हम जब घर के में बिल्कुल वो सीधा हालत में घर से कदम निकालते हैं तो पूरे फुल तैयार होते, वो गलत है फिर ना, क्योंकि हमें पता चला कि हम कहीं जाएं वहां पे आपकी औरतों की मजलिस है, आप जरूर अपने कपड़े भी जो भी आपने अच्छे कपड़े पहने हैं वो दिखाएं भी, कोई हर्ज नहीं है इसके अंदर। इतनी सारे लोगों ने मुझे कहा कि आपको देख के हमने नकाब लेना शुरू किया, क्योंकि उन्होंने कहा क्योंकि हमें पता चला कि ये ऐसी नामुमकिन चीज नहीं है कि जब आप औरतों में हैं तो आप नकाब भी उतारें, आप अपने अबाया भी उतारें, आप अपना हिजाब भी उतारें, कोई मसला नहीं, आप बने संवरे हैं, इस्लाम आपको इससे नहीं रोकता। लेकिन ये करना कि हमने वही कपड़े घर में पहने वही बाहर लेके निकल जाना, ये नहीं हो सकता। इस्लाम ने इसकी हदूद रखी है, घर के अंदर कुछ होना चाहिए, आपको बाहर कुछ और होना चाहिए, ठीक है। तो अब से अगली दफा आप आएंगे तो आपने बताना है कि किस किस ने हस्बैंड को खुश किया वाकई, ना अच्छे कपड़े पहने, वरना लिबास के आदाब पहन के हमने क्या करना, ये पढ़ पढ़ के बस पढ़ते गए और उसके बाद आपने इसको प्रैक्टिकली करना ही नहीं है तो फायदा क्या। बास खवातीन जो है वो उन्हीं कपड़ों में जिसमें पूरा दिन किचन में होती हैं उन्हीं कपड़ों में शाम को हस्बैंड से मिलती हैं, और बाज ऐसे होता है कि नाइट सूट में ही सारा दिन गुजार देती हैं, क्योंकि आज कहीं जाना ही नहीं था तो मैंने सोचा नाइट सूट ही पहने रखे। तो नहीं, रोजाना आपको अपना लिबास चेंज करना है, ठीक है। नाइट का अलग होना चाहिए, वो किचन में नहीं होना चाहिए, किचन वाला हस्बैंड के पास जाने पर नहीं होना चाहिए। बाज लोग फटे पुराने और पैबंद लगे कपड़े पहनकर शिकस्ता हाल बने रहते हैं और इसको दीनदारी समझते हैं। अब मैंने लिटरली किसी से सुना, उन्होंने कहा कि देखो मैं कितनी, मतलब वो अपनी नेकी बता रही थी कि मेरे पास सिर्फ 4 सूट है, हालांकि वो बहुत अच्छा अफोर्ड कर सकती, लेकिन वो। और फिर उसके बाद यही मसाइल होते हैं ना कि फिर हस्बैंड को कोई और अच्छा लगने लगता है, क्योंकि ये तो यही 4 सूट है, पता नहीं वो यूनिफॉर्म है, पहना और उतारा पहना और उतारा। इतनी भी कसम कुर्सी की जरूरत नहीं है, इस्लाम आपको ऐसे नहीं कहता, ये कोई दीन नहीं है कि बस मैं देखो कितने 4 सूटों के, क्योंकि मैंने अब पढ़ लिया कि हजरत उमर ऐसे थे, उनकी तकवा की और बात थी, उसको नहीं अपने ऊपर अप्लाई करके ये सोचें कि मैं फकीर नहीं बनी रहूंगी तो मैं कितनी नेक हो गई, ठीक है। आपकी जो नियत है उसके मुताबिक है, उनकी जो नियत थी वो उसके मुताबिक थी। मेरे ख्याल में इतने तो हम में से कोई भी नहीं है कि इतने हम 4 सूटों में गुजारा करें, बल्कि वो इतना ही नहीं बल्कि वो इन लोगों को दुनियादार समझते हैं जो साफ सुथरे सलीके के कपड़े पहनते हैं, हालांकि दीनदारी का यह तसव्वुर सरासर गलत है। हजरत अबुल हसन अली एक बार नहायत ही उम्दा लिबास पहने हुए थे, किसी शिकस्ता हाल सूफी ने इनके इस ठाट पाट पर एतराज किया कि भला अल्लाह वालों को ऐसा बेशबहा लिबास पहनने की क्या जरूरत है। हजरत शाजली ने जवाब दिया, भाई है शान व शौकत, अजमत और शान वाले खुदा की हम्द और शुक्र का इजहार है, और तुम्हारी ये शिकस्ता हाल सूरत सवाल है कि तुम जुबाने हाल से बंदों से सवाल कर रहे हो, यानी इतनी फकीरी दिखाई कि दूसरा मुझे कोई फकीर समझ के कुछ दे ही दे। दरअसल दीनदारी का इन्हेसार ना फटे पुराने पैबंद लगे घटिया कपड़े पहनने पर है और ना लिबासे फाखरा पहनने पर। दीनदारी का दारोमदार आदमी की नीयत और सही फिक्र पर है। सही बात यह कि आदमी हर मामले में अपनी वुसत और हैसियत का लिहाज करते हुए एतदाल और तवाजुन की रविश रखे, ना शिकस्ता सूरत बनाकर नफ्स को मोटा होने का मौका दे और ना जर्क बर्क लिबास पहनकर फख्र व गुरूर दिखाए। अल्लाह ताला हमें एतदाल के साथ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، ہر معاملے میں اعتدال کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.